साधक की क्रमशः उन्नति। आगंतुक दोष जल्दी मिट सकते हैं, किंतु जो दोष हृदय में मन बुद्धि में एकदम जमे हुए हैं उनका निकलना कठिन है। आगंतुक दोष क्या है? जैसे किसी के साथ कुसंग हो गया, तो संग के कारण कोई दोष आया तो संग मिटने से दोष भी मिट जाएगा, परंतु जो दोष स्वभाव में बैठ गया उसका दूर होना कठिन है। प्रारंभ में मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति में लगता है तो इतना समझकर लगता है कि ये बातें बड़ी अच्छी है, इतना ही समझता है, अपने लिए लाभप्रद है, कल्याणकारक है। जिस प्रकार कुसंग है इसी प्रकार ये सत्संग है, यानी अच्छे पुरुष साधक या शास्त्र के संग से ये काम प्रारंभ होता है। और पूर्व के यदि कोई संस्कार हो तो वे जागृत हो जाते हैं, वे सहायता करने लगते हैं, इसलिए सत्संग की महिमा है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग। सत्पुरुषों के संग के बिना मोह अज्ञान दूर नहीं होता। जैसे बिना सूर्य के उदय हुए अंधकार का दूर होना कठिन है, उसी प्रकार सत्संग के बिना अज्ञान दूर होना कठिन है, क्योंकि सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं मिलती और हरि की कथा, हरि के गुण, प्रभाव, रहस्य, हरि के नाम, कथा, महिमा जो कुछ है वो सत्संग से ही मिलता है। तो भगवान की कथा ये सूर्य के समान है, इसके बिना अज्ञान दूर नहीं होता और अज्ञान दूर हुए बिना भगवान में दृढ़ अनुराग नहीं होता। मामूली प्रेम तो भले ही हो जाए, दृढ़ प्रेम नहीं होता। संसार में प्रेम और आसक्ति में अज्ञान हेतु है। हरि है तो सब जगह, पर प्रेम के बिना नहीं मिलते। भगवान शंकर ने देवताओं की सभा में साफ कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। शिवजी नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रारंभ में सत्संग अच्छे काम में लगाने का साधन बनता है। सत्संग की बातें सुनने पर जितने बुरे काम, बुरे आचरण, बुरा वातावरण है ये बुरे मालूम देते हैं, ये पहली स्टेज है। पहली बात क्या है कि जो बुराई है उसको हम बुरा मानने लगते हैं, हाँ ये बुरा है, ये चीज बुरी है, ये आदत बुरी है, स्वभाव बुरा है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जितनी बुराई अपने स्वभाव में आचरण में होती है वो सुहाती नहीं है, ये दूसरी स्टेज है। तुलसी हरि की भक्ति में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात। मनुष्य जब भगवान की भक्ति में लगता है तो उसके हृदय में जब भक्ति के संस्कार जागृत होते हैं तो पांचों बातें उसको अच्छी नहीं लगती। संसार के विषय भोग अच्छे नहीं लगते, निद्रा है वो भी अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक करना है, संसार में ज्यादा प्रीति करना है, ज्यादा लोगों से बोलना है, उससे घृणा सी होने लगती है, ये बातें अच्छी नहीं लगती। पहले तो दूसरे लोगों में बुरी आदतों को देखता था तो उनसे घृणा होती थी, अच्छी नहीं लगती थी। सत्संग के बाद वे का वो अपने में मालूम देने लगती है। संसार में जितने बुरे काम हैं, जिनको हम दुराचार कहते हैं, वे तो अच्छे लगते ही नहीं। आलस्य, भोग, प्रमाद, पाप, निद्रा, दुर्गुण, दुराचार, ये पहले दूसरों के अंदर भी दिखता था। ये झूठ बोलता है, ये क्रोध करता है, ये लोभ करता है, ये मोह करता है, ये कपट करता है, ये चोरी करता है, ये बेईमानी करता है। दूसरों के भीतर दोष देखता तो ये उसको खटकते थे। तो इसमें एक तो फायदा हुआ कि सत्संग सुनने के बाद उसको दूसरों को अच्छे रूप में देखना चाहता है। अपने में तो ये दोष घटते ही हैं, किंतु दूसरों में जब देखता है तो इसके बुरे मालूम देते हैं कि देखो इसमें ये दोष है। इसके बाद अपने द्वारा जो खराब क्रिया होती है, हृदय के भीतरी तामसी भाव है, अधिक सोना है, प्रमाद है, आलस्य है, तामसी खाना पीना है, जैसे और भी आदत, झूठ है, कपट है, चोरी है, व्यभिचार है, हिंसा है, जुआ है, जो शास्त्र के विरुद्ध है, उसे घृणा होती है, बुरे मालूम देते, अच्छे नहीं लगते। अपने में ये लाभ होता है। उसके बाद राजसी क्रिया, नने ऐश आराम, उनसे विरक्ति होती है। उसके बाद उत्तरोत्तर ऐसे बुरे काम उससे नहीं बनते, किंतु मन में उनका संकल्प होता है, बुरी भावना हो जाती है। जैसे बाहर में क्रोध जाग उठता है तो व्यवहार बिगड़ जाता है, ऐसा तो नहीं होता, किंतु भीतर में क्रोध की वृत्ति जाग उठती है। इसी प्रकार भीतर में काम की वृत्ति जगती है, किंतु विवेक और विचार के द्वारा बाहर प्रकट नहीं करने देते। ऐसे ही लोभ की वृत्ति जागृत होती है, किंतु व्यवहार में लाने नहीं देते, नियंत्रण रखता है, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखता है। इंद्रियों में दोष की भावना तो होती है, किंतु व्यवहार में नहीं लाने देता। ये सत्संग का प्रभाव है। आगे जाकर इंद्रियों में जो दोष की भावना होती है, खोटा काम करने की, हिंसा आदि करने की, जो पाप कर्म है, इंद्रियों के भीतर में वे दोष कम हो जाते हैं। जब उनको बाहर से नहीं करने देते तो अंदर से वो कम होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो न्याय युक्त विषय होता है, उस पर दृष्टि चली जाती है अपने आप ही, और पापमय वृत्ति से उसका मन भी हटता चला जाता है। जैसे थोड़ा लोभ है, परंतु दोबारा विचार आएगा सत्संग के कारण से कि भाई कुछ भी हो, न्याय से पैसा लेवे, पाप से यदि लाखों रुपया भी मिले तो हमें छूना नहीं है। किंतु लोभ होने के कारण से न्याय से जो प्राप्त होता है, उसके लेने में जो रुचि होती है, उतने अंश में लोभ पड़ा है। इसी प्रकार से और बातों में समझ लेना चाहिए। कोई मन के विपरीत करता है तो क्रोध की वृत्ति जागृत होती है, पर व्यवहार में न्यायुक्त क्रोध को लाता है तो उचित है, न्याय है। अनुचित क्रोध का त्याग करता है, उसके बाद अपने न्यायुक्त स्वार्थ को लेकर जो क्रोध आता है उसका भी त्याग कर देता है। ये सत्संग का प्रभाव है। न्यायुक्त क्रोध, न्यायुक्त काम, न्यायुक्त लोभ, इन सब का त्याग करता है, फिर वे इंद्रियों तक पहुंच ही नहीं सकते, मन में फिर भी रहते हैं। आगे जाकर जब मन शुद्ध हो जाता है तो जागृत अवस्था में सब दोष उसके मन में नहीं आते, वहां सत्व गुण का साम्राज्य हो जाता है। फिर उसके हृदय में पाप की, भोगों की, तामसी राजसी फुरना नहीं होती। साधन के विषय की फुरना या प्रारब्ध के भोगों से होने वाली फुरना ही होती है। प्रारब्ध भोग के लिए या साधना के लिए या परोपकार के लिए ही फुरना होती है। यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना और भी सात्विक स्फूर्णा जैसे तीर्थ करना, व्रत करना, उपवास करना महासात्विक वृत्ति होती है। जैसे भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, मन इंद्रियों का नियंत्रण करना, ये सब स्फूर्णा होती है। राजसी और तामसी पूर्णा का प्राय जागत अवस्था में त्याग ही हो जाता है, किंतु स्वप्न में राजसी तामसी पूर्णा होती है, क्योंकि संस्कार हृदय में जमे रहते हैं, वो निकलते रहते हैं, उसका कोई साधना पर कुप्रभाव नहीं पड़ता। बहुत बड़ी साधना हो जाती है, मन एकदम शुद्ध हो जाता है, तो स्वप्न में भी सिवाय साधना के दूसरी कोई बात नहीं आती। जैसे मारवाड़ गुजरात के ब्राह्मण और वैश्य हैं, उनके हृदय में मांस अंडा मदिरा के संस्कार नहीं थे, उनको ऐसा स्वप्न भी कभी नहीं आता कि मैं अंडा खरीद कर लाया, फिर उस अंडे को खाया, देखो उसका क्या स्वाद है, ऐसा किसी को भी स्वप्न में नहीं आता, क्योंकि वे संस्कार भी नहीं है। ये बातें हैं। जब ये पाप भावना एकदम हृदय से उड़ जाती है तो फिर ऐसा भाव स्वप्न में भी नहीं आता, जागृत में तो होता ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं होता। तुलसीदास जी ने लिखा है, उत्तम के अस बस मन माही सपने वान पुरुष जगनाई। पतिव्रता को स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं दिखता, कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार जो अच्छे साधक हैं, उनके हृदय में परस्त्री की भावना स्वप्न में भी नहीं आती। पतिव्रता को स्वप्न में भी कोई पर पुरुष नहीं दिखता। जैसे धन में लोभ की वृत्ति तो नहीं है, न न्याय से न अन्याय से, किंतु रुपया एक ऐसी चीज है जिससे सब चीज बाजार में मिल सकती है, यहां तक कि बेटा भी मिल सकता है, पुत्र भी मिल सकता है, संसार के सारे पदार्थ अर्थ के अधीन होके कारण रुपयों से वह चीज मिल सकती है। यदि अर्थ के प्रति बुद्धि के अंदर आदर है तो परमात्मा की प्राप्ति में विलंब है। आदर होकर भी वह अन्याय से तो नहीं लेता, किंतु न्याय से यदि रुपया प्राप्त हो, रुपया की वृद्धि हो, तो उसमें उसका वैराग्य हो सकता है, क्योंकि वो न्याय से रुपया चाहता है ना, तो न्याय की वृद्धि वैराग्य पैदा कर देगी। अर्थ की सत्ता होते हुए भी उसमें उसका वैराग्य हो जाएगा और भी भोगों से वैराग्य हो जाएगा। तो लेकर कभी धर्म को लेकर, उसके हित को लेकर क्रिया होती है। जैसे क्रोध का जो स्वरूप है अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं होता, किंतु दूसरे के कल्याण के लिए व्यवहार में क्रोध आता है तो वो दोष युक्त नहीं है। इस प्रकार जितने अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार आदि, ये हृदय में रहने वाले अवगुण हैं, इनको सत्संग के द्वारा बदला जा सकता है। वे जो बाधक थे अब ये साधक होने लगते हैं। साधक कैसे हो जाते हैं, ये दोष हमारे सहायता कैसे करते हैं कि भाई साधक पुरुष के लिए साधन कैसे बनते हैं, तो वो बताया जाता है। साधन बनने से तो ये साधक ही बना देते हैं। जब काम क्रोध लोभ आदि को साधना में ले लेंगे तो ये हमको साधक बना देंगे। जैसे कामना है धन आदि की, उसकी जगह हमने कामना की भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवान के भजन के लिए की, तो भगवान में श्रद्धा हो गया, प्रेम हो गई, ये कामना होती है कि ओहो हमें भगवान का संयोग मिले, भगवान से कभी वियोग न हो, भगवान में हमारी परम श्रद्धा हो, भगवान का भजन ध्यान निरंतर बने, परम प्रेम हो, इस प्रकार की कामना होती है, ये साधक ही तो बनाती है। ऐसे ही लोभ है, लोभ हो, पहले तो ये लोभ रुपया इकट्ठा करने का था, अब ये है कि नहीं भगवान मिले, भगवान का और नाम ले, भगवान का और प्रेम बढ़े, भगवान में और अपनत्व बढ़े कि भगवान मेरे हैं और मेरा अपनापन बढ़े, भगवान की प्राप्ति में जो सहायक है उन गुणों की वृद्धि करना, उसके विषय में लोभ होना, ये साधना का लोभ होता है। क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, वैराग्य, इन सात्विक गुणों को बढ़ाना, सात्विक कर्मों की वृद्धि करना, जिनका फल भगवान की प्राप्ति है। जिस पूंजी से भगवान मिले वो पूंजी बढ़ाना, ये लोभ कितना अच्छा है। इसी प्रकार क्रोध है, किसी और पर क्रोध करते थे, एकदम मन में तेजी आ जाती थी, कहने न कहने का विचार ही नहीं करते, मुंह से ऐसा बोलने लगते हैं कि पास वाले सुने तो उनको बुरा लगे, हमको भी होश नहीं रहता कि कौन खड़े हैं, क्या बोलता हूं, लेकिन ये क्रोध भी बड़ा सहायक होता है, क्योंकि हमारे अंदर कई अवगुण हैं, उन अवगुणों को दूर करने के लिए जब हम अपने आप पर ही क्रोध करते हैं, अपने अवगुणों पर क्रोध करते हैं, तो कितना सुधार होता है, हमारी जो बुरी आदत थी वो चली गई, सुधार हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है उसको मिटाने के लिए भी एकदम टूट पड़ना चाहिए, बुरी आदत है, बुरे भाव है, अहंकार है, इसको क्रोध की ज्वाला में नष्ट कर देना चाहिए। पहले अहंकार की बात निकाल दी तो अब उस पर यह संयम करता है कि अब तुम्हारे से अहंकार का बर्ताव हुआ तो देखो भोजन नहीं करेंगे, उस पर दृढ़ता आती है, किसी को कठोर वचन बोलेंगे तो आज भोजन नहीं करेंगे, आज तुम्हारा ये अपराध हुआ तो ये तुम्हें दंड देंगे, अपने आप को ही बोलते हैं, अरे मन आज तेरे से ये अपराध होगा तुझे दंड देंगे। ये जो दंड ग्रहण करने की वृत्ति है, ये साधक की क्रोध वृत्ति है, इसका उपयोग करने से अंतःकरण निर्मल होता है। अपने इंद्रियों के द्वारा कोई राजसी व्यवहार हो जाए या मन के भीतर कोई राजसी भाव आ जाए, कोई स्वार्थ की भावना आ जाए या कोई आसक्ति की भावना आ जाए, तो उस पर क्रोध करता है, एकदम उसका विनाश कर डालता है। वह क्रोध हमारे लिए सहायक होता है। मोह का स्वरूप वास्तव में तामसी होता है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार मैं और मेरापन ये अज्ञान का कार्य है। शरीर में जो अहंता और ममता है ये अज्ञान से पैदा होती है, किंतु ये साधन के अंदर मोह बड़ा काम का है। क्या मैं ईश्वर का सेवक हूं, ईश्वर मेरे स्वामी है, एक भगवान ही मेरे हैं और कोई नहीं है, मेरे भगवान और मैं भगवान का, मैं जो कुछ करता हूं वह भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए करता हूं, ज्ञान के सिद्धांत में जहां सत्व गुण से भी परे की स्थिति है, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोदिगच्छति, उस काल में वह गुणों के अलावा किसी को कर्ता नहीं देखता है, वो गुणातीत होता है। इस प्रकार का जब भाव दृढ़ होता है तो शरीर से संबंध विच्छेद होता है। भगवान कहते हैं वह मेरे भाव को यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, तो ऐसा मोह बहुत अच्छा होता है। ईर्ष्या का रूप भी बदल जाता है। पहले ईर्ष्या होती थी कि ये आदमी संसार में मेरे से ज्यादा नाम कमा रहा है, ये आदमी मेरे से ज्यादा धन कमा रहा है, ये आदमी मेरे से ज्यादा पद में जा रहा है, तो इससे एक ईर्ष्या पैदा होती थी। अब साधन भजन के अंदर ये ईर्ष्या लाते हैं तो बड़ा काम का है। कि एक आदमी साधन भजन करता है तो मन में आती इससे भी तेज मेरा साधन होना चाहिए, और ये भी साधन तेजी से करे तो इसको देखकर मैं फिर तेजी से साधन करूं, ये ईर्ष्या आ जाती है। जैसे विष्णु दत्त ब्राह्मण के साथ राजा चोल ने होड़ लगाई कि यदि ईश्वर में तुम्हारी अधिक भक्ति होगी, अधिक प्रेम होगा तो भगवान तुम्हें पहले मिलेंगे, और मेरी होगी तो मुझे पहले मिलेंगे, आओ अपन दोनों इस काम में लग जाएं, तो दोनों के दोनों भगवान की भक्ति में लगे। अब ईर्ष्या तो है, पर ये ईर्ष्या कितनी अच्छी है, कितनी ऊंची है। दोनों एक दूसरे को देखकर खूब जोश के साथ, तेजी के साथ इस ईर्ष्या को बढ़ाते हुए भजन करने लगे। इसी तरह गर्व और घमंड का भी जो रूप होता है वो संसार में कितना नुकसान करने वाला होता है। जो आदमी गर्वीला होता है, घमंडी होता है, उसका घमंड हर आदमी को अखरता है, परंतु जब ये गर्व घमंड साधन में ले आता है तो सबको अच्छा लगता है। ये गर्व भी सहायक होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जितने अवगुण हैं, सबका परिवर्तन हो जाता है, सब बाधक हो जाते, ये सब बाधक थे, सहायक हो जाते हैं। जब बुद्धि में व्यसन का अत्यंत अभाव हो जाता है तब उसी काल में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, एक मिनट का भी विलंब नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उनके मन, बुद्धि और इंद्रियों में सात्विक, राजस और तामसी जितने अवगुण मैंने बताए वो रहते ही नहीं है। इसलिए ये हमारी जितनी वृत्तियां हैं ये हमारे सहायता करने वाली हो जाती है, काम, क्रोध, लोभ आदि। विरक्त महापुरुष होते हैं वो तो सब प्रकार की वृत्तियों से उपराम हो जाते हैं। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश तो सत्वगुण का कार्य है, मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो जागृति है प्रकाश है, बुद्धि में जो ज्ञान का बाहुल्य है वो बुद्धि का प्रकाश है, इंद्रियों में जो हरेक कार्यों के विषय में जानकारी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय है वे इंद्रियों में प्रकाश है, देह में आलस्य का अभाव होकर जो जागृति वो देह का प्रकाश है, मन, बुद्धि, इंद्रियों में जो चेतना है, जागृति है, वो सत्वगुण का कार्य है। मन में किसी काम को करने की वृत्ति पैदा होती है उसका नाम प्रवृत्ति है, इंद्रियों के द्वारा जो काम करने की काम कर किया जाए वो प्रवृत्ति है, वह इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति, और फिर उसमें जो प्रवृत्त होता है, काम में लगता है, वो क्रिया और स्थूल प्रवृत्ति। तो ज्ञानी महात्मा इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। लोभ है, रुपयों में आसक्ति है, ये सब बातें नष्ट हो जाती हैं। उसकी भी चेष्टा ज्ञानियों की तरह होती है, ये दोष ही है, फिर उनके द्वारा चेष्टा मात्र ज्ञानी की तरह होती, सदृशम चेष्टते स्वस्याहा। ज्ञानवान के हृदय में अवश्यम भावी प्रारब्ध भोगने के लिए क्रिया तो होती है, मन में स्फुरणा होती है, परंतु ये केवल स्फुरणा होकर के ही रह जाती है, कोई दोषी नहीं है। इसी प्रकार तामसी मोह, मन, मोह है माने मन, इंद्रिया और बुद्धि का मोहित होना, कुछ पता नहीं चलना, ये भी ज्ञानी महात्मा के लिए कोई बंधन करने वाली बात नहीं है। अज्ञान और मोह दोनों को अलग अलग कहा जाता है, कहीं तो मोह को निद्रा आलस्य के नाम से कहते हैं, कहीं मोह शब्द नहीं आता, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम। घर में कोई द्वेष करने वाला हो तो द्वेष करे, आए तो आओ, घर में द्वेष करने वाला कोई हो तो द्वेष करे, आए तो आओ, जब ये चले जाते हैं तो उनकी आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, इच्छा का नामो निशान मिट जाता है। थोड़ी कुछ बात छूट गई इनमें। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, तो कोई द्वेष करने वाला हो तो उसके द्वेष पैदा नहीं होता। दूसरे जो उच्च कोटि के साधक होते हैं उनमें भी इच्छा यही होती है, कोई हमारे साथ द्वेष करता है तो करता, हमको किसी हालत में द्वेष नहीं करना है। सांसारिक लोगों में और साधकों में देखा जाए तो उनके मनोभाव में बड़ा अंतर मिलता है। साधक के मन में हरदम ये पीड़ा होती रहती है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा भाव शुद्ध बना रहे, भगवान की तरफ चले, लेकिन विपरीत भाव क्यों आते हैं? ऐसी उसके अंदर एक टीस रहती है, एक वेदना रहती है जो असाधक के नहीं होती। जो साधना नहीं करते उनको तो ये पाली पोसी रहती है। ऐसे ही साधना में लगा हुआ है उसका कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, नींद नहीं आती, तो वो नींद की इच्छा तो नहीं करता है पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने से घबराता नहीं है। शरीर को नींद आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो नहीं आती, कोई परवाह नहीं करता। ऐसी वृत्तियां साधकों की होने लगती है। कोई निवृत्त हो जाए तो उनकी आकांक्षा नहीं करता कि ये चीज ऐसी हो तो ठीक है, ऐसी उसके मन में भी नहीं आती। ऐसा करते करते समाधि का योग मिल गया, समाधि अवस्था हो गई तो उसके साथ कोई विरोध नहीं, आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो नहीं आई। हर काम में वो उपराम रहता है। साधक चाहता है कि मेरा ध्यान लग जाए तो अच्छी बात है, समाधि लग जाए तो अच्छी बात है, साधन काल में कोई विक्षेप हो तो अच्छी बात, साधन काल में कोई विक्षेप नहीं हो तो अच्छी बात है, चंचलता नहीं आए मन में तो अच्छी बात है, आलस्य नहीं आए तो अच्छी बात है, विघ्न आकर प्राप्त होते हैं तो हटाना चाहता है। किंतु जो सिद्ध महात्मा होते हैं वे तो इन सब वृत्तियों से उपराम हो जाते हैं। कोई मन के विपरीत बात आ जाए तो द्वेष नहीं करता, न उनकी निवृत्ति चाहता है, कुछ नहीं करता। परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में कैसा भाव होता है ये बताया जाता है। हम साधना में कहां तक चलते हैं इन बातों को अपने हृदय से देख देख करके टटोलना चाहिए। जो भक्त के द्वारा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त, जो भक्ति के द्वारा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, या अद्वैत मार्ग के द्वारा जो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और संसार में उनका शरीर लोगों की दृष्टि में है, उस शरीर के अंतःकरण में ब्रह्म ही ब्रह्म है। गुणातीत पुरुष को लक्ष्य में रखकर उसकी बात कह रहा हूं। अद्वैत मार्ग के द्वारा जो उस ब्रह्म को प्राप्त हो गया, ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार साधक ब्रह्म ही बन गया। ब्रह्म बनने के बाद उसकी जो सिद्धावस्था है, उस सिद्धावस्था में जो अंतःकरण है उसकी बात कहता हूं। उसके अंतःकरण में संसार का अत्यंत अभाव है ही नहीं, और उसके हृदय में परमात्मा का एकदम प्रत्यक्ष भाव है। परमात्मा का तो भाव और संसार का अभाव ये उससे कभी मिटता नहीं है, वो सिद्ध महापुरुष है। यह संसार उसको वास्तव में नहीं दिखता है, उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग जिस मकान को देखते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी को वो मकान नहीं दिखता हो, उसको मकान ही दिखता है। पुस्तक है तो उसको पुस्तक ही दिखती है, और जो चीज हम लोग देखते हैं ऊपर से तो उनको वही दिखती है, पर वो स्वप्न के समान कल्पना मात्र दिखती है, काल्पनिक सत्ता मानता है। इस दृष्टि से संसार को संसार उसके अंतःकरण में स्वप्न जैसा है। जैसे किसी के आंखों में कोई दोष आ गया, जाले से दिखते हैं और एक आकृति दो दिखती है, परंतु मन में समझता है कि ये नेत्र का दोष है। ये देखें, अब आप सब दो दिखते हैं पर मन में समझते हैं कि दो नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी महात्मा देखता ही आकृति मात्र है, वास्तव में नहीं है। देखते हुए भी उसको अभाव के रूप में देखता है, उसका अभाव ही समझता है। उस वस्तु का न तो उसके दिल के ऊपर रागात्मक असर पड़ता है, न द्वेषात्मक असर पड़ता है। किसी ने अपमान कर दिया तो देखा ये है ही नहीं, अपमान है ही नहीं। किसी ने बहुत बड़ा सम्मान कर दिया तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ता। ऐसे उसके अंदर भाव रहते हैं। अंतःकरण की वृत्तियां तीन है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अहंकार आत्माभिमान, कर्ता का अभिमान, देहाभिमान, अनित्य पदार्थों में निहित बुद्धि, ये सब अविद्याएं हैं। विद्या अविद्या तथा उनके सब कार्य सब नष्ट हो जाते हैं ज्ञानी महात्मा के लिए। ये अहंकार नहीं रहते, मन रहता है, बुद्धि रहती है, परंतु अंतःकरण की एक वृत्तिगत तो अहंकार रहता है, लेकिन प्रतिबंधक अहंकार नहीं होता। देखो अहंकार भी दो प्रकार का है, एक तो वो अहंकार जो अपने किसी योग्यता को, शरीर आदि को लेकर होता है, वो होता है कल्याण में बाधा देने वाला प्रतिबंधक अहंकार। एक अहंकार है व्यवहार के लिए कि मैं गया, मैं भाया, मैं बोला, तो बोलने के लिए अहंकार होता है। तो उसमें कर्ता का संबंध नहीं होने के कारण से नाम मात्र का है, बुद्धि भी नाम मात्र की है, मन भी नाम मात्र का है। जैसे और क्रिया होती है ऐसे मन की क्रिया होती है, कोई विशेष बात नहीं। जैसे गैस बत्ती पेट्रोमैक्स है, उसमें रेशम की जाली जल जाती है, जलने के बाद जब तक टंकी में तेल रहता है तब तक वो प्रकाश देती रहती है। तेल उसकी आकृति है, छू करके देखो राख की आकृति है, जली हुई है, उसमें कोई दम नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञानी महात्मा के मन, बुद्धि, अहंकार भस्म की तरह हुए हैं, भुने हुए बीज की तरह से हैं। जैसे गेहूं है, चना है, इनको भूंज लो, दिखने में तो गेहूं चना ही है, परंतु वो बीज खेती के काम नहीं आते हैं। खाने से तो पुष्टि प्रदान करते हैं, पर बोने से अन्न पैदा नहीं होता। चना हो, कोई भी चीज हो, जो भुनने के बाद आकृति मात्र, उपजाऊ नहीं होती। इसी प्रकार की उसके कर्मों की आकृति होती है, उसमें कोई फल जनकता नहीं होती। मैंने गैस बत्ती की जाली के बारे में बताया, वास्तव में वह इससे भी कमजोर है, क्योंकि गैस बत्ती कहीं तो ठीक दिखती है ना, वहां तो उसकी दृष्टि में तो बिल्कुल संसार काल्पनिक मालूम देता है। ये जो बीजों की सत्ता तो व्यावहारिक सत्ता है और उनकी काल्पनिक सत्ता है, वस्तुतः जो है ही नहीं, केवल बहम से दिखने वाला है, ऐसी बात है। जैसे मरुभूमि में जल दिखता है पर नहीं है, आकाश में तिरवरे दिखते हैं किंतु तिरविरे नहीं है। तिरविरे गए हुए, तिरविरे आकाश में तिरविरा गए हुए। मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर, इंद्रियों की आकृति दिखती है परंतु वास्तव में कोई चीज नहीं है। अंतःकरण में जो ये सब चीज दिखती है, इंद्रियों में जो चीज दिखती है, इंद्रियां भी द्वार है, मन, बुद्धि, अहंकार भी द्वार है, ये द्वार भी एक प्रकार से कल्पित है, इंद्रियां भी झूठी है, वास्तव में इनकी भी सत्ता नहीं है। तो इनमें प्रतीत होने वाले पदार्थ तो और ही काल्पनिक है, ऐसी उसकी दृष्टि रहती है। स्वप्न में जो दृश्य देखा, जागने के बाद उस दृश्य का काल भूतकाल हो जाता है, तो जो काल है वह वर्तमान काल ही रहता है, इसलिए स्वप्नवत कहा जाता है, स्वप्न नहीं स्वप्नवत। दूसरी चीज यह है कि परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है, उसका स्वरूप विज्ञान आनंद है, सब जगह एकदम प्रत्यक्ष की तरह प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की तरह क्यों कहते हैं कि जैसे स्वप्नवत कहा ऐसे प्रत्यक्ष की तरह कहा। उसका अंतःकरण शुद्ध दर्पण है, शुद्ध दर्पण में हर एक चीज का प्रतिबिंब आता है। यहाँ ब्रह्म का जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है वह स्वरूप उसमें प्रतिबिंबित होता है। जैसे किसी दर्पण में चंद्रमा का प्रतिबिंब आता हो तो उसको हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के सदृश है। चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा के सदृश ही होता है, पर यह नहीं कह सकते कि ये दिखने वाला सच्चा चंद्रमा है, वह तो बिंब के रूप में है, सच्चा चंद्रमा कैसे कह सकते हैं। इसी प्रकार असली ब्रह्म का स्वरूप उसमें प्रतिबिंब के रूप में आता है। समझाने के लिए हम कहते हैं किंतु चेतन परमात्मा का किसी जड़ दर्पण में प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। वास्तव में अंतःकरण तो जड़ है, परमात्मा चेतन है, यह प्रतिबिंब साफ प्रतीत होता है। ये बात तो केवल कहने कहने की होती है अनुभव में, और क्या कहे, अनुभव कहा नहीं जा सकता है। महापुरुषों की वाणी के द्वारा उनका वर्णन करते हैं, वेदों में जितनी व्याख्या है, चाहे वो ब्रह्मा जी के वचन हो, चाहे किसी बहुत बड़े ऋषि के वचन हो, और तो और चाहे स्वयं भगवान के वचन क्यों न हो, भगवान भी तो वाणी के द्वारा ही कहते हैं ना कि परमात्मा सत है, चेतन है, आनंद है, सचित से परे भी है, सत असत भी वही है, सत असत नहीं भी है, तो वो भी वाणी के द्वारा ही कहते हैं। अब वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वो केवल लक्ष्य कराने तक ही है, चाहे कोई कहो। परमात्मा सम अनंत शांतिमय है, इन शब्दों के द्वारा तो केवल लक्ष्य कराया जाता है। अभिप्राय यह है कि उसके हृदय में परमात्मा का जो भाव है वही वाणी के द्वारा कहा जाता है। इस प्रत्यक्ष का भी दो प्रकार है, एक तो वह ज्ञानी महात्मा ब्रह्म ही बन जाए, एक प्रत्यक्ष पर एक असली प्रत्यक्षता है। बहुत गहरी बात है, इस पर जोर दिया जाए कि शरीर पर किसी प्रकार का कोई आघात पड़े तो उदासीन वदासीन है, उदासीन की तरह रहो। कभी मौका मिले लोगों में कोई निर्णय करना हो तो पक्षपात रहित रहना चाहिए, किसी का भी पक्ष लेवे, अपनों का पक्ष लेवे, परायों का पक्ष न लेवे, तो ऐसे झमेले में पड़े नहीं, पड़े तो नीति युक्त सत्य बात कहनी चाहिए। महापुरुषों की यही बात होती है, उनकी नीति यही रहती है कि जो घटना घटती है और उसमें उनको जो बिल्कुल स्पष्ट निर्णय प्रतीत होता है वे पक्षपात रहित होकर करते हैं। वो किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में किसी के द्वारा भी चलायमान नहीं होते, उन पर प्रभाव पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके लिए सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा की महत्ता है, संसार की महत्ता है ही नहीं। इसलिए उनके अंतःकरण के भाव बड़े दिव्य होते हैं। जैसे एक पुरुष है उसे अपने हाव भाव से कटाक्ष से स्त्री भी चलायमान नहीं कर सकती, और वह पुरुष स्वयं भी स्त्री को देखकर चलायमान नहीं होता, ऐसे महापुरुष होते हैं, न तो वे संसार से चलायमान होते और न संसार उनको कोई चलायमान कर सकता है। ये सब साधन भजन के द्वारा क्रम से उन्नति होते होते इस स्थान पर ये पहुंच जाता है। इसको यूं भी बताते हैं, थोड़ा सा और है। मारवाड़ में एक बनिया था, वो एक बार अकाल पड़ गया तो पंजाब चला गया। पंजाब में उसका एक मित्र था, वो किसान था, वो खेती करता था। बनिए ने देखा खेत में गेहूं चना जो बहुत धन धान लहरा रहे हैं। खेत को देखकर बनिया बहुत प्रसन्न हुआ। बनिए ने किसान मित्र से पूछा खेत में क्या लगता है। उसने कहा गेहूं चना जो आदि लगे। बनिए ने कहा मारवाड़ में तो भयंकर अकाल पड़ गया, खाने को भी नहीं मिल रहा है, मैं तो मेरी स्त्री बाल बच्चे सहित तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम हमारी सहायता करो। किसान मित्र ने बनिए को सलाह दी कि भाई तुम भी मेरी तरह खेती करो। तो बनिए ने कहा कि मुझे तो खेती करनी नहीं आती, मैंने तो कभी खेती की नहीं। किसान मित्र ने सलाह दी कि मैं कहता रहूं वैसा तुम करते रहो। तो कहा कि तुम्हारे पास कितना रुपया है? बनिए ने कहा मेरे पास 1000 रुपया है और ये 1000 रुपया मैं तुमको देता हूं कि मेरे पास यही पूंजी है, अब तुम कहो वैसा हम करेंगे, तुम्हारी बात को हम टालेंगे नहीं। तो उसने 1000 रुपया दे दिया। किसान मित्र ने 200 बीघा जमीन लेकर के खेती करना प्रारंभ किया और हल जोतकर बोने में 100 रुपया लग गया, 400 रुपया हल जोतने वाले की मजदूरी को दे दिया, इस प्रकार 500 रुपये लग गए, बाकी 500 रुपये बनिए को वापस दे दिए। जब तक खेती तैयार न हो जाए तब तक तुमको भी तो खाने को चाहिए, ये रुपया तुम्हारे पास रखो। अब बनिया तो कुछ जानता नहीं था खेती के बारे में। अब जब वो खेती होने लगी, अनाज सब खेत के अंदर डाल दिया, तो बनिए के मन में बड़ी घबराहट हुई कि थोड़ा बहुत अनाज था ये भी चला गया। किसान मित्र ने कहा कि धीरज रखना, जब तक खेती तैयार नहीं हो जाए तब तक तुमको इन पैसों से ही काम चलाना है। थोड़े दिनों के बाद जमीन में से छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे। बनिए ने देखा कि जमीन में गेहूं चना हमने खूब जो है डाला था, ये घासा क्या निकल गया, ये हरा हरा पत्ता की क्या क्या निकल गए। बनिया दौड़ा दौड़ा किसान के पास गया, कहने लगा जी अनाज डाला था वो तो नहीं, आ तो छोटे छोटे छोटा घास पैदा हो गया, अनाज तो सब नष्ट हो गया। वो दुखी हो गया। किसान मित्र ने कहा अरे तुम्हारा खेत सब खेतों से अच्छा है, हजारों मन अनाज पैदा होगा। बनिया को एक बात थी, किसान मित्र पर पक्का विश्वास था, कहा कि अच्छी बात, चुप हो गया। कुछ दिन बाद बीज बड़े हो गए। बनिया ने जाकर फिर किसान मित्र से कहा अरे क्या करते हो, वहां तो जो अनाज बोया था उसका घास ही घास हो गया, अब तो उस घास को पशु गधे सब चर जाएंगे, हमारा तो खेत में लगे हुए रकम भी खराब हो जाएगी, अब क्या करेंगे। किसान ने कहा देखो तुम्हारे खेत का बहुत सा काम तो हो गया, तुम्हारा खेत जल्दी तैयार होने वाला है, खेत की रक्षा करने के लिए गाय भैंस आदि पशुओं के बचाने के लिए खेत में बाड़ लगा दो तो कोई नहीं आएगा। फिर बनिया राजी हो गया, बाड़ लगा दी, 100 रुपया उसमें लग गया। अब वो बनिया देखता है कि 1000 रुपये थे मेरे पास, 600 तो लग गए, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो घास फूस ही देख रहा हूं। मन ही मन में तो वो लगा, लेकिन किसान मित्र के पास जाता बार बार और जाके पूछता कि जी खेती कैसे होगी, क्या होगा, मेरे 600 रुपये लग गए, क्या होगा। तो किसान ने कहा देखो अभी खेती की निराई बाकी है, निराई कराओ, निदान के बाजू। बने निदान क्या होता है? किसान ने कहा खेत में अनाज को छोड़कर जो फालतू घास होती है तो हमको क्या पता, ये तो अनाज का घास है कि ये फालतू घास है, कि हम बता देंगे, हम बतावे वैसा करो। तो देखो ये तो अनाज का पौधा है और ये देखो फालतू घास है, ये फालतू घास है, ऐसे इस ढंग के जितना भी वो फालतू घास है, ठीक। किसान पर विश्वास हो गया, निराई कर दी, निराई में भी पैसा लगा। फिर किसान सोचता है कि अरे हमारा तो पैसा तो खर्च हो रहा है और खेत में क्या हो गया क्या नहीं हो गया तो पता नहीं चला। फिर थोड़ा अनाज बड़ा हुआ और गेहूं में बालियां आने लगी, चने में फलियां लगने लगी। किसान ने देखा कि ये क्या निकली आया। फिर जाकर के बाली को देखा, छोटे छोटे चनों को देखा, क्या तो छोटे छोटे, पर उनको दबाया तो दूध निकला। तो दौड़ा दौड़ा किसान के पास गया, जाके लगा ये क्या हो गया, पौधों में दाने तो पड़े हैं, गेहूं और चने जैसे ही हैं, लेकिन जब उनको फोड़ते हैं तो दूध निकलता है, ये क्या हो गया। अरे किसान ने कहा कि भाई अभी कच्चे हैं, ये पकेंगे तब एकदम वैसे ही हो जाएंगे जैसे तुम खाते थे। बनिया ने कहा ठीक, किसान ने कह दिया तो बहुत अच्छी बात है, शांत हो गया। फिर बनिया ने इतना जरूर पूछा कि पक्के कैसे होंगे। किसान ने कहा अपने आप हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुमको कोई परिश्रम नहीं करना है। अब एक काम करना, इनमें ये जो दाने पड़ गए तो पक्षी से रक्षा जरूर करना, नहीं तो कच्चे दानों पर आकर के पक्षी बैठेंगे, उनको कुरे देंगे तो ये तुम्हारा अनाज समाप्त न हो जाए। तो पहले तो बाड़ लगाई और अब जो है वो पक्षियों से रक्षा करने लगा। अब खेत में ची ची करते हुए पक्षी आए, बोली समझ में आए तो देखो अरे हमारे खेत के शत्रु आ गए। अब वो पत्थर उठा करके उनकी तरफ फेंकता तो सब भाग जाते। जैसा किसान ने कहा वैसा किया। थोड़े दिनों के बाद बनिए की खेती पक गई, अब अनाज के ढेर लग गए। अब उसको वो हजार रुपए लगे, अब कितना हो तो सब हजारों का तो कोई वहां पता ही नहीं, कितने ही हजारों का धान हो गया। बनिया बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ी शांति मिली, मेरा पंजाब आना सफल हो गया, सब परिश्रम सफल हो गया, मेरा मित्र भी मुझे बहुत अच्छा मिल गया, बड़े खुशी से रहने लगा। ये तो मैंने आपको एक दृष्टांत कहा है। इस दृष्टांत का अर्थ यह है कि आप लोगों को संत महात्माओं को अपना परम मित्र मानकर उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए, किसी भी प्रकार से उनकी बात में कमी नहीं समझे और उनकी बात पर विश्वास करके और भजन साधन की खेती करनी चाहिए। अब भजन साधन में जिस जिस प्रकार की बाधा आती हो, ये मान है, बड़ाई है, ये सब पशु की तरह से है, चिड़िया की तरह से है, जो इसमें खाने वाले हैं, संसार में भोगों की रुचियां हैं, ये सब खेती को नष्ट करने वाली है। इसलिए महात्माओं से पूछ पूछ करके साधन भजन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।